या अय्युह लदीन आमनू, हम देखे ना ये इतने बड़े बड़े अजर की बात, इतनी बड़ी नियमतों की बात कायम रहने वाली, और इसके बाद बता दिया गया ऐसे ही नहीं ये मिल जानी, ऐसे ही नहीं मिल जानी। देखो ईमान वालो, ए ईमान वालो, ला तत्तखिदु अबाअकुम व इख्वानकुम औलिया, तुम अपने बापों को और अपने भाइयों को अपने दिली दोस्त, जिगरी दोस्त, मददगार, सपोर्टर, हिमायती, रफीक, जिस पे इंसान भरोसा करता है, वो सब वली में आ जाता है। हालांकि बाप और भाई तो वो रिश्ते हैं जिन पे इंसान बड़ा भरोसा करता है, जो बहुत करीबी होते हैं। और हमारा दीन भी तो हमें कहता है कि इनके साथ अच्छा ही करो, तो फिर यहाँ पे क्यों कहा गया कि उनको ना औलिया बनाओ? किस वजह से? अगर अगर इस शर्त ये बात है, अगर ये बात है, इन इस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान, अगर वो कुफर को ईमान पे तरजीह देना, तो मत उनको दोस्त बनाना, मत उनको वली बनाना, मत उनको अपना हिमायती और अपना राजदान बनाना। समझा ये बात? यहाँ पे भी क्या बता दिया गया कि देखो जो मोमिन है ना, उसका ये भी टेस्ट है कि फैमिली रिलेशन में भी वो किसके साथ रखता है और किसके साथ नहीं रखता, क्योंकि उसके लिए टॉप प्रायोरिटी क्या है, टॉप पे क्या चीज है उसके लिए, अल्लाह, उसका रसूल, ये दीन। अगर ये भी उसके प्यारे रिश्ते जो हैं, ये भी उनसे बुग्ज रखते हों, अल्लाह रसूल इस दीन से, कुफर को पसंद करें ईमान पे, कुफर में रहना चाहें, तो तुमने उनको औलिया नहीं बनाना। अगर वो दीन के मामले में तुम्हें तंग करें, तुम्हें कुछ ऐसी चीजें जो दीन की हैं उन पे चलने ना दें, तो तुम उनको औलिया ना बनाओ। अगर वही रुकावटें बन जाएं, कुफर को पसंद कर रहे हैं ईमान पे, तो तुमने उनको नहीं दिली दोस्त बना लेना। ठीक है, देखिए अब सारी सबको छांटा जा रहा है ना, ईमान कितना है पता चल जाएगा। यह पता चल जाएगा किसको किस पे प्रायोरिटी दे रहे हैं। वमय्यतवल्लाहुम मिनकुम फौलाएकहुम ज़ालिमून, फिर भी ये बात कहने के बावजूद कोई फिर भी उन्हीं को अपना राजदान, अपना सच्चा दोस्त बनाता है, तो फिर वो उन्हीं में से है, और यही लोग जालिम हैं। यही तो जुल्म है ना, कि जो काफिर आबा हैं, जो काफिर भाई बंद हैं, उनकी खातिर अल्लाह रसूल को भी छोड़ देना, ईमान को छोड़ देना, कुफर में उन्होंने रहना पसंद किया है, उनकी चॉइस है, तो आप उनके साथ अच्छा सलूक तो करोगे? जैसे हजरत अस्मा बिनते अबी बकर थी, उन्होंने पूछा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मेरी वालदा आई हैं, मुशरिका हैं, मैं क्या करूं? तोहफे तहाइफ भी लाई थी उनके लिए, मैं क्या करूं, एक्सेप्ट करूं नहीं करूं? आपने उनके साथ अच्छा सलूक करने का फरमाया, उनके साथ अच्छा सलूक करो, मगर मोहब्बतों के रिश्ते नहीं हो सकते। लेकिन ना आजमा लिया ना अल्लाह ने मोहब्बत को भी, मोहब्बत किससे करते हो? एक है खूनी रिश्ता, उसको प्रायोरिटी देते हो या ईमान को? अल्लाह हू अकबर। और ये हमारे भी टेस्ट होते रहते हैं। ठीक है, हम उस सोसाइटी में नहीं है जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कि कहीं कोई काफिर आबा या इख्वान हो, ठीक है नहीं है, लेकिन बहुत दफा यही रिश्ते हमारे दीन के रास्ते में रुकावट बनते हैं, ईमान में रुकावट बनते हैं, हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं, हमें अल्लाह के हुक्मों को मानने से रोकते हैं, हमें हमारे समझने ये रिश्ते हैं जो हमें जकड़ लेते हैं, हमें चलने ही नहीं देते, क्योंकि उनको कुफर पसंद है ईमान पर, उनको समझ नहीं है, वो नाम के तो मुसलमान हैं लेकिन उनको समझ नहीं, उनकी प्रायोरिटी नहीं है ईमान, तो वो हमें भी पीछे खींचते हैं। लेकिन याद रखिए, अल्लाह की मोहब्बत और गैर अल्लाह की मोहब्बत एक दिल में बराबर जमा नहीं हो सकती, एक जरूर ऊपर होगी। देखा यही जा रहा है किसकी मोहब्बत है जो ज्यादा शदीद है, या उनकी खातिर ईमान को पीछे कर देते हो या उनको पीछे करते हो। और अब बड़ा इम्तिहान आ गया, और ये आयत आप बहुत दफा देखेंगे, बहुत जगहों पे कोट होती है। कुल कह दीजिए, उनके लिए तो था ही। देखें अब उनके कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जाहिर ही बात है उनके बाप भाई वगैरह काफिर थे और ये ईमान ले आए थे। तो आप बता दिया गया कि अब ये नहीं करना कि उनको राजदान बना दो, उनको ये बना दो, आपका ईमान ऊपर होना चाहिए। लेकिन अगर देखा जाए तो हम सब भी किसी ना किसी दर्जे में इन चीजों से गुजरते हैं, जहां पे दो मोहब्बतें मुकाबले में खड़ी हो जाती। अब फिर हम चूज कर लेते हैं बहुत दफा मजबूर होके उन मोहब्बतों को जो हमारे रिश्तों की मोहब्बत है, ईमान को एक तरफ डाल देते हैं, अपना दीन एक तरफ कर देते हैं, अल्लाह रसूल की मोहब्बत एक तरफ रख देते हैं। इसीलिए आगे का कह दिया गया, कुल कह दीजिए, इनका ना आबा उकुम, अगर हैं तुम्हारे बाप, व अबना उकुम और तुम्हारे बेटे, व इखवान उकुम और तुम्हारे भाई, व अजवाज उकुम और तुम्हारी बीवियां, व आशीरत उकुम और तुम्हारे खानदान, कुंबे कबीले यानी बाप भाई और बेटे, ये तो वो है ना जो इनके साथ खूनी रिश्ते हैं, खून के रिश्ते। इनकी मोहब्बत तो इंसान के अंदर एक नेचुरल होती है, और ये अनकंडीशनल है, अनकंडीशनल। बाप के अंदर सारे बाप दादा नाना सारे आ गए, बेटों के अंदर बेटे पोते नवासे सब आ गए, ख्वान के अंदर भाई आ गए सब। ये मोहब्बतें ऐसी हैं जो कि आप दुनिया में कहीं पे भी चले जाएं, ये रिश्ते खत्म नहीं हो सकते। माँ बाप का रिश्ता नहीं खत्म हो सकता, औलाद का नहीं होता। जितना मर्जी कोई किसी का नाफरमान हो, कितने ताल्लुकात खराब हो जाएं, कोई भी चीज हो जाए, मगर वही आपका भाई रहेगा, वही आपका बेटा रहेगा, वही आपका बाप रहेगा, उनको चेंज नहीं कर सकते, अनकंडीशनल है ये नहीं होगा कि तुम मेरी बात मानोगे तो मेरे भाई हो वरना नहीं हो भाई, तुम मेरे मेरी बात मानोगे तो मेरे बेटे हो वरना आप हो, ये नहीं। ठीक है। अच्छा, अब अगली जो मोहब्बत है वह अजवाजुकुम, ये भी एक मोहब्बत होती है, खूनी तो नहीं है लेकिन ये भी एक मोहब्बत होती है जिसके ऊपर इंसान बड़ी कुर्बानियां करता है। आदमी है तो उसकी बीवी स्पाउस, औरत है तो शोहर, और इसमें सारे ससुराली भी आ गए। वह आशीरातुकुम और तुम्हारे खानदान, अब इसमें आपकी एक्सटेंडेड फैमिली आ गई, कजन आ गए, चचा मामू खाला पुप्पी ये सारे आ गए इसके अंदर, ये भी बड़े प्यारे रिश्ते होते हैं। ये तो है रिश्ते। अब आ गए तीन आगे जो हैं वो मटीरियलिस्टिक चीजें हैं। वो माल जिनको तुमने कमाया, देखिए जो अपने हाथ की कमाई होती है, पैसे आपके पास पैसे कहीं से आ जाए, मुफ्त माले मुफ्त होता है ना, तो वो उसके ऊपर दिल भी बेरहम होता है, फिर इंसान ऐसे ही लुटाता है, लेकिन जब अपने हाथों से कमाया होता है ना इंसान को बड़ा प्यारा होता है, इसलिए इंसान कहता है मैंने बड़ी मेहनत से कमाई की हुई है। इसलिए हम बार बार सुनाते हैं ना कि मैं कैसे जाया कर दूं, मैंने इतनी मेहनत से कमाया ये माल, तो वो बड़ा ही इंसान को अजीज होता है वो। व तिजारत उन तख्शौना कसादहा, और तिजारत जिसके मांद पड़ने का तुम्हें डर हो कि पता नहीं इसमें घाटा ना हो जाए, या जिसको कहते हैं ना मंदी है, आजकल बाजार में मंदी है, स्लो है कारोबार, तो तुम्हें जिसका डर हो, अब जब जिसका डर होता है ना कि बिजनेस ये वैसा नहीं है, स्लो होने का इसका डर है और इसका सीजन गुजर जाएगा या कुछ है, तो इंसान के वो हर वक्त उसकी फिक्र में रहता है, ये कारोबार वैसे ही चल रहा होता है, ये कारोबार ये होता है कि ये डर होता है कि ये इसमें घाटा हो जाएगा, या ये अब इसकी मांग नहीं रहेगी, डिमांड नहीं रहेगी इसकी। वह मसाकिन तरदौना अहब्बा इलैकुम, और मसाकिन और घर तुम्हारे, तरदौना जो तुम पसंद करते हो उनको, तुम्हारे घर हैं। घर भी इंसान की वो चीज होती है कि जिसको बंदा, देखिए हर मकान घर नहीं होता, घर जो होता है ना वो चाहे झोंपड़ी क्यों ना हो, वो बड़े बड़े महलों से भी ज्यादा इंसान को अजीज होता है, क्योंकि घर वो चीज होती है जिसमें इंसान को आके सुकून मिल जाता है, सुकून की जगह होती है। तो ये मोहब्बतें आठ हैं, आठ मोहब्बतों को एक समझ लें, एक तराजू समझ लें, ये आठ चीजें एक तरफ रखती। अब कहा गया अहब्बा इलैकुम, ज्यादा प्यारे हैं तुम्हारी तरफ, मीन अल्लाह दूसरे पल्लड़े दूसरी तरफ अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह से और उसके रसूल से और जिहाद से उसके रास्ते में, आप देख लो कौन ज्यादा अजीज है। अगर ये 8 मोहब्बतें ज्यादा अजीज हैं इन 3 से, फतार अब्बासु, तो इंतजार करो, हत्ता याती अल्लाहु भी अम्रे, हत्ता कि अल्लाह ताला अपना फैसला ले। और वो फैसला क्या है? अजाब, अजाब का फैसला। वल्लाहु ला यहदिल कौमुल फासिकीन, अल्लाह हिदायत नहीं देता फासिक कौम को। फिस्क क्या? इताअत से निकल जाना, नाफरमानी में हद से बढ़ जाना। तो ये फासिक हैं फिर जो इन चीजों को ज्यादा मोहब्बत रखते हैं इनसे अल्लाह के मुकाबले में। अब यहां पे असल में क्या है, ये हैं दिलों की बातें, दिलों के इम्तिहान। देखिए एक तो नेचुरल मोहब्बत होती है और कोई हरज नहीं है उसके अंदर, कोई ऐसी नहीं कि ये बुरी है मोहब्बतें, ये नहीं कहा जा रहा, कोई ये नहीं कहा जा रहा कि ये मोहब्बतें नहीं होनी चाहिए, ये भी नहीं कहा जा रहा, इसको मिसअंडरस्टैंड नहीं करना आयत को। और ये सारी चीजें काबिले मुजम्मत हैं, ये इनको बुरा कहा गया, ऐसा है, कुछ नहीं है। ये सब चीजें जो 8 चीजें हैं ना, ये अपनी अपनी जगह जरूरी भी हैं, इनकी अहमियत भी है और इनके लिए दिल में एक नेचुरल मोहब्बत भी है और इसमें कोई बुराई नहीं है। सुन रहे हैं ना मेरी बात, इसमें कोई बुराई नहीं है कि कोई अपने बाप भाई उनसे, अल्लाह ताला ने तो खुद फरमाया सिला रहमी करने का, फिर अजवाज के साथ जो ताल्लुक है उसका भी कितना फरमाया, एक औरत जन्नत में दाखिल हो सकती है उसका हस्बैंड उसे राजी हो, अगर अल्लाह ताला की फरमा बरदार हो, नमाज रोजे की पाबंद हो, उसका शौहर उसके लिए अच्छी गवाही देने वाला हो, जन्नत में जा सकती। और तुम्हारे खानदान है ये सारे सिला रहमी के रिश्ते हैं, फिर अब माल है या तिजारत है तो कस्बे हलाल भी इबादत है, और घर है इंसान का, घर में रहना भी, घर बनाना भी उसकी एक जरूरत है, तो इसके अंदर कोई बुराई की बात नहीं है। लेकिन अब यहां से बात समझे, अगर ये इनकी मोहब्बत और इनकी इनको प्रायोरिटी देना, इनको तरजीह दी जाए अल्लाह और उसके रसूल पे और अल्लाह के रास्ते में स्ट्रगल करने पे, तो ये फिर है फिस्क, ये फिस्क है। और फिर ये फिस्क वो है जिससे इंसान अल्लाह की हिदायत से महरूम हो जाता है। एक फरमा दी ना, वल्लाहु ला यहदिल कौम फासिकीन, ऐसे लोगों पर अल्लाह ने हिदायत देता। और ये बड़ा नाजुक सा एक डिसीजन या एक मरहला है, क्योंकि देखें एक है तरफ नेचुरल मोहब्बतें हैं और इनकी दिल में कशिश भी है, बड़े ही अट्रैक्टिव हैं ये, और इनमें इंसान घिरा हुआ रहता है हर वक्त, इनसे निकलते नहीं हैं आप, लेकिन फिर भी इनकी मोहब्बतों को बिलो होना चाहिए अल्लाह रसूल और जिहाद से। अगर ये कहीं ज्यादा महबूब बन गई ना, तो फिर क्या है, फिर अल्लाह ताला के फैसले का इंतजार करो। और आज तो ये हर जगह बनी हुई है। असल में ये किसने, कौन कहेगा अपने मुंह से कि हाँ, मुझे तो अपने बाप दादा अल्लाह रसूल से भी ज्यादा प्यारा है, नाउज़ुबिल्लाह, ऐसी बात कोई नहीं कहता, कोई भी नहीं कहता कि मुझे अपनी जॉब ज्यादा प्यारी है अल्लाह रसूल से, मुझे अपना घर ज्यादा प्यारा है अल्लाह रसूल से, ऐसे कोई मुंह से कोई भी नहीं कहेगा। अगर हमारी लाइफ बता देती है, हमारी जिंदगियां किधर गुजर रही हैं, औरतों की किधर जा रही हैं, बच्चे हैं, घर है, आदमियों की किधर है, माल है जो, यानी जो जॉब्स हैं या ट्रेडिंग कोई भी बिजनेस बिजनेसेस हैं उनके, ये बिजनेस और जॉब है, या बच्चे खानदान, औरतों के लिए घर बच्चे, घरों की खिदमतें हो रही हैं, घरों के काम हो रहे हैं, घरों की सफाई सुथराई हो रही है, घरों की डेकोरेशनें हो रही हैं, घरों पे ही सारा टाइम गुजर रहा है, सारा गम ही घर बन गया, सारा गम ही खानदान बन गया, उससे आगे सोच जाती ही नहीं, कोई फिक्र ही नहीं, तो ये आयत क्या कह रही है? देखिए मैं कुछ भी अपने पास से तो बता नहीं रही है, तो सामने आपके लिखी भी है, इसमें तो कोई ऐसी एक्सप्लेनेशन की भी जरूरत नहीं है। क्या कह रही है ये आयत? किन चीजों को अहमियत ज्यादा मिलनी चाहिए थी? अल्लाह रसूल की बात तो है ही, यहां तक तो हमें भी समझ आती है, एक तीसरी चीज भी यहां पे है। तो वाकई ये चीजों से पता चलेगा कि वाकई हम अपने दावे में कितने सच्चे हैं ईमान के। कुछ स्ट्रगल करना, कुछ अपने आप को लगाना, कुछ मेहनत करना इस रास्ते में कि एक तरफ आपका घर है, एक तरफ मेहनत दीन के लिए हो रही है, एक तरफ आपके बच्चे जॉबें और बिजनेस हैं और खानदान है, और वो मेहमान आ गए और वो मेहमान चले गए और वो हो गया और अब वो हो गया और अब हम ये छोड़ के बैठ गए, और ऐसे को एक तरफ ये मोहब्बतें हैं और एक तरफ अल्लाह रसूल और जिहाद है। कितने लोग इस चीज के लिए परेशान होते हैं कि आए मेरी कोशिशों में कमी आ गई, आए मेरी से वो कोशिश नहीं हो रही अल्लाह के रास्ते में जैसी होनी चाहिए। हाँ मगर इस पे हम बड़े परेशान होते हैं कि हाँ वो खानदान वाले अब आ रहे हैं, उनके लिए क्या खाने बनाने हैं, क्या करना है, ओहो मैंने तो अपनी जॉब पे जाना था, मेरी जॉब ना आज की रह जाए, ओ मेरी आज दुकान नहीं खुली, मेरा बिजनेस का नुकसान हो जाना। एक औरत कितनी परेशान होती है कि मेरी घर के अंदर आज ये चीज है या ये चीज नहीं है, या इतना खूबसूरत लग रहा है, या आज इसकी सफाई नहीं हुई, या इतनी सजावट में कमी है, फलानी का घर देखो कैसा है और मेरा घर देखो कैसा है। अतरब्बा सूहत याती अल्लाह भी अमरी, तो इंतजार करो यहां तक कि अल्लाह ले आए अपना फैसला। और कब ये फैसला आएगा? दुनिया में भी आ सकता है, और दुनिया में नहीं आया तो आखरत में तो है, और दुनिया में भी आते हैं, यही रिश्ते बेवफाई कर जाते हैं, यही घर खत्म हो जाते हैं, यही बिजनेसेस लुट जाते हैं, यही जॉबें हाथ से चली जाती हैं, बेसकूनियां होती हैं, बेचैनियां होती हैं, डिप्रेशंस होते हैं, चैन कहीं है ही नहीं, सारी चीजें भी हैं फिर भी चैन नहीं है। होना तो ये चाहिए ना सब चैन हो, सकून हो उसके बाद, नहीं, इसलिए कि तुमने इनको ऊपर कर दिया और अल्लाह रसूल और जिहाद तो कहीं पीछे चले गए, वो तो कहीं लिस्ट में है ही नहीं, है ही नहीं कहीं लिस्ट में। यानी जब हम इन मोहब्बतों से फारिग होते हैं ना, तो फिर हम वेकेशन पे चले जाते हैं, क्योंकि अब अभी भी नहीं मेहनत करनी। वैसे हमारे पास हर वक्त एक ही बहाना है कि ये चीजें, ये जो लिस्ट में दी गई हैं, ये हैं जो हमारा सारा वक्त ले जाती हैं, हम क्या करें। देखिए ना, वही मैंने आपको जैसे बताया ना कि मुंह से कोई भी नहीं कहेगा कि नहीं जी, नहीं 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 मुझे तो ये 8 मोहब्बतें ज्यादा अजीज हैं, ये कौन कहेगा? कोई भी नहीं कहेगा, कोई जैसा तैसा भी मुसलमान हो वो भी नहीं कहेगा, लेकिन जिंदगी बता देगी एफर्ट्स किधर लग रही हैं, अटमोस्ट स्ट्रगल किधर हो रही है, किधर हो रही है, इधर हो रही है कि इधर हो रही है, अल्लाह का दीन कितनी प्रायोरिटी पे है। ये सब बातें सिर्फ प्रायोरिटीज की हैं, तरजीहात, रोजाना की बेस पे हम किस चीज को तरजीह देते हैं। जाहिर है अगर अल्लाह रसूल और जिहाद ज्यादा प्यारा होगा तो फिर तो क्या, फिर तरजीह में कौन सा काम होगा, फिर प्रायोरिटी किसकी होगी? और ये झूठ है अगर हम अपने आप को बहलाते हैं, नहीं तो हमने तो बस अल्लाह रसूल की खातिर हम तो जान देने को तैयार है, मतलब दीन आ जाए हमने तो ये करने को, ये सिर्फ झूठी बातें हैं अगर हमारी जिंदगी उसको नहीं डिपिक्ट करती, उसमें उसका कोई इजहार ही नहीं हो रहा, ये झूठी बातें हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, तुम में से कोई कामिल मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक कि मैं उसको उसके वालदैन और उसके बेटे और तमाम लोगों से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। हजरत उमर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ा हुआ था ना, तो उस वक्त उन्होंने क्या फरमाया था, या रसूल आप मुझे हर चीज से ज्यादा अजीज है सिवाय मेरी अपनी जान के। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अजीज ना रखे। जान से ज्यादा अजीज कहाँ रखना, या तो हर चीज उनसे ज्यादा अजीज है, हर चीज ही उनसे ज्यादा अजीज है। आपको हर एक इनकार करेगा, नहीं नहीं ऐसा तो नहीं, नहीं नहीं ऐसा तो नहीं, हम तो उनको बहुत अजीज रखते हैं। तो क्या है आपकी जिंदगी क्या बता रही है, उनकी तड़प क्या थी, उनका रोना क्या था, हमारे रोने क्या है, हमारी तड़प क्या है, उनकी मेहनत क्या थी, हमारी मेहनत क्या, उनकी जिंदगी क्या थी, हमारी जिंदगी क्या है, और अल्लाह की मोहब्बत तो रसूल की मोहब्बत से भी ऊपर है, वो उससे भी ऊपर है। तो सोचे अल्लाह की मोहब्बत कितनी होनी चाहिए, मेरी जान जाए तो जाए, मेरे हर चीज जाए तो जाए, लुट जाए, अल्लाह ताला की इज़ाद नहीं पीछे हो सकती मेरी जिंदगी। और मुस्नद अहमद और अबू दाऊद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब तुम आइन की खरीदो फरोख्त करने लगोगे और गाय बैल की दुमे थाम लोगे, गाय बैल की दुमे थामना मतलब क्या है, यानी खेती बाड़ी में लग जाओगे और जिहाद छोड़ दोगे, तो अल्लाह ताला तुम पर जिल्लत मुसल्लत कर देगा, यानी तुम्हें बस ये तिजारतों में लग जाओगे तुम, खरीदो फरोख्त बिजनेसेस में, और या खेती बाड़ियां कोई जॉबें कर रहे हैं कुछ है, और फिर जिहाद को छोड़ दोगे तो अल्लाह ताला तुम पे जिल्लत मुसल्लत कर देगा। अब वो जिल्लत दूर कैसे हो, कैसे दूर हो, हाँ जिल्लत मुसल्लत हुई भी क्या हो, वो उस वक्त तक दूर नहीं होगी जब तक कि तुम अपने दीन की तरफ ना लौट आओ, जब तक तुम वापस इस दीन की तरफ नहीं आ जाते। तो क्या हल है, क्या सलूशन है, जब हम ड्राइंग रूम में बैठ के, दावतों पे बैठ के ये डिस्कशन करते हैं कि दीन का क्या हाल हो गया, तो उसको भी सोचें कि इसका सलूशन क्या है, डिस्कशन करने से तो नहीं उससे निकल आ सकते, क्या करना करना चाहिए उसको, ये करना चाहिए, मुसलमान मुल्कों को मुत्तहिद होना चाहिए, फलां को ये करना चाहिए, ये चाहिए चाहिए तो बहुत कह लिया हमने, हमने क्या करना है ये सोचें। वो जो चाहिए है ना, वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन अपनी जात तो हाथ में है ना, या अपने ऊपर भी नहीं कुछ कर सकते। अब ये जो आगे की आयात है, अच्छा ये बता दूं कि जब तक ये तरजीह नहीं हो जाएंगे ना, ये है असल इम्तिहान, कि जब तक ये तरजीह नहीं बन जाएंगे उस वक्त तक फिस्क से नहीं निकल सकते, उस वक्त तक अजाबों के अंदर ही, अजाब का ही फिर इंतजार करें। ठीक है, अब जो अगली आयत है, मैंने आपको बताया था कि ये जो बीच वाली आयतें हैं ये ऐसे लग रहा है कि ये फतह मक्का से पहले की हैं। अब ये जो 25 से आयत शुरू हो रही है ये वही मजमून है जो 1 से 6 तक आयत में था, इसलिए मैंने आपको स्टार्ट में ही उसका थोड़ा सा बता दिया था कि आप फिर कनेक्ट कर सकें। जो हजरत अली को आयात देकर भेजी गई थी, फिर उसके बाद जो इनको 4 महीने की मोहलत दे दी गई थी वो ये सब था ना, तो अब ये उसके साथ ही अटैच है। लकत नासरकुमुल्लाहु फी ममावातिना कसीरा, अल्लाह ताला अपना एहसान याद दिला रहे हैं कि अलबत्ता तहकीक मदद की तुम्हारी अल्लाह ने बहुत सारे मवातिन पे, बहुत सारे मौाक़े पे, बहुत सारे मौाक़े पे तुम्हारी मदद फरमाई है अल्लाह ताला ने। और कौन कौन से मौाक़े थे, जब बदर हुई है, जब उहद हुई है, जब अहजाब हुई है, खैबर में, मतलब हर जगह में अल्लाह ताला ने कितनी मदद फरमाई, कितने ही मौाक़े आए। वह यौम हुनैन, और हुनैन के दिन भी अल्लाह ताला ने तुम्हारी मदद फरमाई। हुनैन क्या है, ये हुनैन वो जगह है जो मक्का और ताइफ के दरमियान एक वादी है। हुनैन असल में एक आदमी का नाम था, जुरहम कबीले का जो आदमी था उसका नाम हुनैन था, और उसकी नाम पे समझ लें ये वादी है। उसकी औलाद हवाजिन और सकीफ थी, जिन्होंने सीरत पढ़ी है उनको पता होगा, और उसी की औलाद यहाँ पे बसी हुई थी। तो ये दोनों कबीले जो थे ये तीर अंदाजी में बहुत मशहूर थे, और जब मुसलमानों ने मक्का फतह कर लिया तो इनको जब पता चला तो इन्होंने कहा कि अब मुसलमानों ने मक्का तो फतह कर लिया, अब ये जरूर हमारे ऊपर हमला करने के लिए आएंगे, तो इससे पहले कि ये हमारे ऊपर हमला करें हम इनके ऊपर हमला कर देते हैं। इस बात का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इल्म हुआ कि वो तैयारी कर रहे हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12,000 का लश्कर लिया, 12,000 इस तरह से कि 10,000 तो मक्का से ही आए थे, और सॉरी मदीना से ही आए थे जब मक्का फतह करने के लिए, और 2,000 मक्का से शामिल हो गए। तो 12,000 का ये लश्कर लेकर हुनैन की तरफ रवाना हुए। ये अब जो वाक्य है ये शव्वाल का है, फतह मक्का के बाद का, क्योंकि फतह मक्का रमजान में हुई थी। तो इन कबीलों ने बड़ी तैयारी कर रखी थी और बड़ी स्ट्रेटजीज उन्होंने की हुई थी, और बल्कि अपने बच्चों को भी और मवेशियों को, माल औरतों सबको लेकर आ गए हुए थे ताकि कोई पीछे ना भागे। तो इन्होंने ऐसे किया था कि इन्होंने छुपा दिए थे अपने जो तीर अंदाज थे ना, क्योंकि तीर अंदाजी में बहुत माहिर थे ये लोग, तो इन्होंने छुपा दिए हुए थे। इधर मुसलमान ये सोच रहे थे कि आज तो कोई मसला ही नहीं, आज तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, हम तो जिस वक्त इतने थोड़े थे, 313 थे, और फिर अजाब में भी कितने ही कम, मतलब कम ही तादाद थी, बाहर इतना बड़ा लश्कर आके बैठा हुआ था, तो हम तो आज इतने ज्यादा हैं, तो आज तो हमने जीत ही जाना। यानी बजाय इसके कि अल्लाह की मदद के ऊपर भरोसा करते कि अल्लाह ही है, वो अपनी कसरत पे एतमाद करने लगे, और अल्लाह ताला को ये बात पसंद नहीं आई है। हुआ ये कि जब हवाजिन के जो तीर अंदाज थे वो, उन्होंने हमला किया, पहले तो मुसलमान जब गए हैं ना तो उन्होंने जाहिर है बड़ा मुसलमान लड़े दिलेरी के साथ, और ये लोग भागने लगे तो मुसलमान इनका माले गनीमत इकट्ठा करने लगे। जब ये हुआ तो तब वो जो पहाड़ों में छुपे हुए थे उन्होंने जो तीर चलाने शुरू किए, तीरों की ऐसी बारिश करी कि जो इतनी अचानक थी और अनएक्सपेक्टेड थी कि मुसलमान बौखला गए, उनके कदम लड़खड़ा गए, वो भाग खड़े हुए, जिसका जिधर को मुंह था वो भागने लगा, पैनिक मच गया ना एक। अब मैदान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और बात जाता है कि हार्डली 100 मुसलमान रह गए थे, सोचें 12,000 में से सिर्फ 100 के करीब, इतने थोड़े थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थे। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को पुकार रहे हैं, अल्लाह के बंदो मेरे पास आओ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। कभी वो शेर पढ़ते थे, अन नबी यू ला कदिब, मैं नबी हूँ इसमें कोई झूठ नहीं, अन अबनु अब्दुल मुत्तलिब, मैं बेटा हूँ अब्दुल मुत्तलिब का। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्बास को हुक्म दिया कि वो आवाज लगाएं मुसलमानों को, तो हजरत अब्बास की जो आवाज थी ना वो बहुत ऊंची थी, तो उन्होंने आवाज लगाई, यानी कि उन्होंने आवाज लगाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे उनको बताया कि आप आवाज लगाओ उन लोगों को जो बैते रिजवान वाले थे, तो उन्होंने आवाज लगाई, दरख्त वालों कहाँ हो। जब उन्होंने आवाज लगाई है ना तो वो जो मुसलमान भाग रहे थे वो ऐसे मुड़े हैं जैसे गाय अपने बच्चों पे मुड़ती है, वो कह रहे थे हम आ गए, लब्बैक लब्बैक करते हुए वो आ गए। इस तरह जब मुसलमान जमा हुए तो फिर दोबारा लड़ाई शुरू हुई। अब मुसलमानों को मौका मिला कि वो जम के लड़े और अल्लाह ताला ने फतह अता फरमाई, और फिर अल्लाह ताला ने सकीनत भी नाजिल फरमाई, दुश्मनों से जो खौफ आ गया था वो भी दिल से निकाल दिया, फरिश्ते भी नाजिल हुए, और मुसलमानों ने 6,000 काफरों को कैदी भी बनाया। तो ये इसकी सारी बैकग्राउंड है जो मैं आपको बताना चाह रही थी कि यानी मुसलमानों ने इस जंग में, ये ओनली जंग थी, वाहिद जंग थी जिसमें मुसलमान जो थे वो आउट नंबर ज्यादा थे, बहुत ज्यादा थे दुश्मन के मुकाबले में। और जब अपने देखा कि हम ज्यादा है ना, तो फिर उनके अंदर ये जहन के अंदर आ गया, इसलिए आगे आया इज आजबत कुम कथरतुकुम, जब तुम्हें पसंद लगी तुम्हारी कसरत। बाज ने कह दिया, बाज ने मुंह से भी ये बोल दिया, सब ने तो नहीं लेकिन बाज ने मुंह से ये कह दिया कि आज तो हम जरूर फतह पाएंगे क्योंकि आज हमारी तादाद ज्यादा है, आज हमें कौन हरा सकता है। तो ये जो कसरत का नाज था ना, तो ये भी एक धोखा था, कभी इंसान अपनी कसरत पे धोखा ना खाए। हमारा खानदान बहुत बड़ा है, हमें कौन कुछ कह सकता है, हमारे लोग बड़े ज्यादा हैं, हमारे पास यहाँ वसाइल बहुत हैं, हमारे पास पैसा बहुत है, मुझे कौन कुछ कह सकता है, मेरे साथ ऐसे कैसे हो सकता है, या मुझे कौन कुछ हरा सकता है। तो ये माल थे, वसाइल थे, हालांकि ज्यादा थे, कहाँ बदर का आप अभी पढ़ चुके हैं, 313, और कोई हथियार नहीं, कोई कुछ नहीं, ना सवारियां ना कुछ, और वहां पे फतह हो गई, और यहाँ पे अल्लाह ताला ने दिखाया, फतह तो दे दी लेकिन अल्लाह ताला ने दिखाया कि कभी भी अपनी चीजों पे भरोसा ना करना, भरोसा अल्लाह की मदद पे होना चाहिए कि अल्लाह तू साथ रहना, अल्लाह हम कुछ नहीं कर सकते, अल्लाह ताला तेरी नुसरत चाहिए हमें। कि जब इंसान अपने आप पे भरोसा करता है ना, तो वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, फिर वो उस तरह से ना काम करता है, उसको पता होता है नहीं मैंने तो जीत ही जाना, नहीं मैंने तो, आप देखे ना वो बच्चा जो ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, उसको अपने ऊपर ही बहुत मान है, मुझे तो सब कुछ आता है, मुझे तो सब कुछ आता है, वो क्या करेगा, पढ़ेगा वो कोई, वो लास्ट मिनट तक कोशिश करेगा, वो प्लान करेगा, वो उस तरह से ऑर्गेनाइज्ड होगा, नहीं उसको पहले से मैंने तो पास ही हो जाना, मैंने तो पास ही हो जाना। इसी तरह जिंदगी के किसी मैदान में भी अपने आप के ऊपर इतना नाज ना करें, मुझे तो सब कुछ ही आता है, मेरा तो सब ठीक ही होगा, चाहे कोई भी काम है अल्लाह के ऊपर भरोसा कीजिए, क्योंकि अल्लाह ताला पे भरोसा करने से अल्लाह की मदद आती है। हम जब ये सोच लेते ना, अल्लाह मेरे हाथ में नहीं तेरे हाथ में, अल्लाह मुझे तेरी मदद चाहिए, जब इंसान यही सोच लेता है कि मेरे अपने ही हाथ में है, मेरा तो सब कुछ ठीक है, वो तो दुआएं भी नहीं करता फिर, वैसे ये तो वैसे वो अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ाता भी नहीं है, इंसान दुआएं रो रो के तभी करता है जब उसको होता है कि मेरे अपने पास तो कुछ भी नहीं, मेरे पल्ले क्या है, अल्लाह जो करना है तू नहीं करना। अक्सर लेकिन ये होता है, आपने देखा जब हमें थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस आ जाता है ना कि मेरे हाथ में चीज है, तो अल्लाह पे भरोसा ही करना बंद कर देते हैं, हमें लगता है ये चीज ने ही हमारा सारा काम कर देना, ये जो मेरे पास है, जो भी कोई स्किल है, कोई टूल है, कोई सवारी है, कोई कोई भी चीज है या पैसा है, तो मुझे लगता है कि बस आप मेरे हाथ में सब कुछ है, अल्लाह ताला को भूल ही जाते हैं। फिर जब सारी चीजें हमारे हाथ से निकल जाती है ना, तो फिर उसके बाद देखा है हमारे डायलॉग क्या होते हैं, बस जी अब तो अल्लाह नहीं करना है, अब तो वो कुछ नहीं है, अब तो अल्लाह नहीं करना, तो पहले किसने करना था भाई, पहले भी तो अल्लाह नहीं करना था, लेकिन पहले असल में अपनी चीजों में बड़ा यकीन था, अपने कॉन्टेक्ट्स पे यकीन था, मैं उसको भी जानती हूँ उसको भी जानती हूँ, तो कुछ हो ही जाएगा हमारा, अब जब सबने जवाब दे दिया तो अब अल्लाह ही करेगा, ये चीज पहले होनी चाहिए बाद में नहीं, ये पहले से ही शुरू से ही जहन में होना चाहिए, अल्लाह तू नहीं करना, अल्लाह अल्लाह ही करेगा, मेरे हाथ में नहीं है, समझ आई बात, हम बाद में सोचते। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जब तुम्हें अपनी कसरत पसंद आने लगी, फलम तो ज्ञान कुमशयन, तो कोई चीज भी फिर तुम्हारे काम ना आई, अल्लाह अकबर, वदाकत अलैकुमुल अर्दु बिमा रहुबत, और तंग हुई गई तुम पर जमीन उसकी कुशादगी के बावजूद, कि कोई भगदड़ मच गई है, ऐसे पता ही नहीं चल रहा था, आपको पता है जब एक हजूम लोगों का जब दौड़ने लगता है जिधर जिसका मुंह हो, तो क्या हाल हो जाता है, फिर वल्लई तुम मुदबिरीन, फिर पीठ फेर गए तुम, सुम्मा अनज़लल्लाहु सकीनतहू अला रसूलिही वअलल मोमिनीन, फिर अल्लाह ताला ने सकीनत नाजिल की अपने रसूल पे और मोमिनों पे, और देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जम के खड़े रहे मैदान में और आप नहीं भागे, और जो जो भाग रहे थे उनके दिल को भी अल्लाह ताला ने सुकून दे दी। ये जो सकीनत होती है ना, कितनी दफा कुरान पाक में आता है कि ये ऊपर से उतरती है, ये सुकून है ना, ये इंसान, ये चैन, ये इत्मीनान, ये सुकून, ये चीजों से नहीं मिल सकता, इसका मतलब पैसा कमा लो, बड़े घर ले लो, फलां चीज कर लो, ये हो जाएगा तो फिर सुकून से रहूंगी मैं, वो सुकून से रहूंगी मैं, वो सोचते हैं कि इन चीजों से आना है, ये तो नाजिल अल्लाह की तरफ से होता है जी, हर जगह यही पे आया है, यही बात आई है, सूरह फतह में भी आप आगे पढ़ेंगे सकीनत नाजिल होना, और भी जगहों पे आता है, अल्लाह ने नाजिल की सकीनत यही आता है, वानजला जुनूदन लम तरौहा, और उतारे लश्कर तुम नहीं देख सकते थे उनको, ऐसे लश्कर अल्लाह ताला ने उतारे, यानी फरिश्ते इस जंग में भी उतरे थे, तो वअद्दब अल्लदीन कफरू, और अजाब दिया उन लोगों को जिन्होंने कुफर किया, वदालिक जजा उल काफिरीन, और यही जजा है, बदला है काफरों का। तो ये वो जंग थी कि जिसमें मुशरिकों ने बाद में बयान किया कि हम में से एक भी ऐसा नहीं था जिसकी आंखों और मुंह में मट्टी ना पड़े, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर एक मुट्ठी भर मट्टी ली थी और उनके चेहरों की तरफ फेंकी थी, वो काफरों की आंखों में और मुंह में मट्टी पड़ गई। तो कहता है कि उसी वक्त हमें ऐसा मालूम होने लगा गोया जमीन और आसमान के दरमियान लोहा किसी लोहे के तश्त पे बज रहा है, जैसे एक ट्रे हो उसमें लोहे पे लोहा बज रहा हो, यानी ऐसे जमीन और आसमान के दरमियान हम ऐसे लग रहे थे। यानी उनके दिल के अंदर कैसा है एक रोब, और कैसे अल्लाह ताला ने उनके दिल में एक दहशत पैदा कर दी और इनके दिलों में सकीनत। एक रिवायत में है कि भागे वो मुसलमान, जब 100 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गए तो आपने उसी वक्त हमले का हुक्म दिया। आप अपनी सवारी पर से मैदान जंग का नजारा कर रहे थे और फरमाया अब लड़ाई गर्मा गर्मी से हो रही है, उसमें है कि अल्लाह ताला ने जिस काफिर को चाहा कत्ल करा दिया, जिसे चाहा कैद करा दिया, और उनके माल और औलादें अपने नबी के हाथों में दे दी। हज़रत बर्रा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह तआला से किसी ने पूछा कि ए अबू अमारा, क्या तुम लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से हुनैन वाले दिन भाग निकले थे? तो आपने फरमाया लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कदम पीछे नहीं हटा। तो बात यह कि कबीला हवाजिन के लोग तीरंदाजी के फन के उस्ताद थे, हमने उन्हें पहले ही हमले में शिकस्त दे दी, लेकिन जब लोग माले गनीमत पर झुक पड़े तो उन्होंने मौका देख कर फिर महारत के साथ तीरों की बारिश बरसाई और फिर भगदड़ मच गई। लश्कर भाग निकला लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े रहे। उस वक्त आप किसी तेज सवारी पर नहीं जो भागने दौड़ने में काम आए, बल्कि खच्चर पे सवार थे और मुशरिकों की तरफ बढ़ रहे थे, और अपना आप छुपाते नहीं थे बल्कि अपना नाम अपनी जुबान से पुकार पुकार कर बता रहे थे कि ना पहचानने वाला भी पहचान ले। ऐसी थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहादुरी, और कितना आपका तवक्कुल था अल्लाह ताला पर कि अल्लाह की मदद आएगी। तो फिर अल्लाह ताला ने अपने नबी पे और मुसलमानों पे सकीनत नाजिल की और फरिश्ते भेजे जिनको कोई नहीं देखता था। एक मुशरिक का बयान था कि हुनैन वाले दिन जब हम मुसलमानों से लड़ने लगे, एक बकरी का दूध निकाला जाए इतनी देर भी हमने उन्हें अपने सामने जमने नहीं दिया, फौरन भाग खड़े हुए और हमने उनका पीछा शुरू किया, यहां तक कि हमें एक आदमी सफेद खच्चर पे सवार नजर आया। हमने देखा कि खूबसूरत नूरानी चेहरे वाला है कोई, और कुछ लोग उसके इर्द गिर्द हैं, और उसकी जुबान से निकला कि तुम्हारे चेहरे बिगड़ जाएं, वापस चले जाओ। बस उसका ये कहना था और हमें शिकस्त हो गई, यहां तक कि मुसलमान हमारे कंधों पे सवार हो गए। यानी उसने कहा कि हम तो अच्छे भले ऐसे थे, हम तो इनका पीछा कर रहे थे। अल्लाह ताला ने देखें कैसे फरिश्ते उतार के मदद फरमाए। इब्ने मसूद फरमाते हैं कि मैं भी उस लश्कर में था आपके साथ, सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिर्फ 80 मुहाजिर और अंसार रह गए थे, हमने पीठ नहीं दिखाई, हम पर अल्लाह ताला ने इत्मीनान और सुकून नाजिल फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सफेद खच्चर पे सवार दुश्मनों की तरफ बढ़ रहे थे, जानवर ने ठोकर खाई, आप जीन पर से नीचे की तरफ झुक गए। मैंने आवाज दी या रसूलल्लाह ऊंचे हो जाइए जाइए, अल्लाह ताला आपको ऊंचा ही रखे। आपने फरमाया एक मुट्ठी मट्टी की दो। मैंने भर के दी, आपने काफरों की तरफ फेंकी दी जिससे उनकी आंखें भर गई। फिर फरमाया मुहाजरीन और अंसार कहाँ हैं? मैंने कहा यही है। फरमाया उनको आवाज दो। मेरा आवाज देना था कि वो तलवारें लेके वे लपक आए। उसके बाद फिर मुशरिकों की कुछ नहीं चली। और शैबा बिन उस्मान कहते हैं कि मैं गजवाए बदर में, मेरा बाप जो था वो हजरत हमजा के हाथों से और मेरे चचा जो है हजरत अली के हाथों से मारा गया था। अब ये उस वक्त अभी मुशरिक है, ठीक है? आपको पता है कि कई मुशरिक भी आए थे ना, क्योंकि मक्का फतह हो गया था तो जो मुशरिकीन वहां पे रहते थे तो वो भी साथ चले गए, तो बाद में ये मुसलमान हुए। तो इन्होंने कहा कि बदर का जो वो था ना, हुनैन के दिन जब देखा कि इस हालत में मुसलमान हो गए हैं कि लश्कर शिकस्त खा के भाग खड़ा हुआ है और आप तन्हा खड़े हुए हैं, और तो कहते हैं मुझे बदर वाले दिन का वो याद आ गया, और उसका इंतकाम और जोश और
मेरे दिल में आया कि मैं इनसे इंतकाम लूँ। तो ये मौका गनीमत जान के मुसलमानों के साथ हो लिया कि जहां कहीं मौका मिलेगा मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमला कर दूंगा। तो यानी किस इंटेंशन से आए थे, मैं उनके साथ होकर हर मौके की तलाश में रहा, यहां तक कि ये मौका आ गया जब मुसलमानों के पांव उखड़ गए और वो भागने लगे, तो मैं मौका पाके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंचा। मगर देखा कि दाएं तरफ हजरत अब्बास हैं, उनकी हिफाजत कर रहे हैं, और बाएं तरफ अबू सुफियान है। तो मैं पीछे से गया कि पीछे से जाके एक ही दफा हमला करते हैं। आपकी नजर मुझ पे पड़ गई, आपने मुझे आवाज दी, शहबा यहां आओ। और अपने करीब बुलाकर अपना हाथ मुबारक मेरे सीने पर रख दिया और दुआ की, या अल्लाह इससे शैतान को दूर कर दे। अब मैंने नजर उठा के जो देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे दिल में अपनी आंख कान और जान से भी ज्यादा प्यारे हो गए थे और फरमाया जाओ कुफार का मुकाबला करो। और अब मेरा ये हाल था कि मैं अपनी जान आप पर कुर्बान कर रहा था और बड़ी बेजिगरी के साथ दुश्मन का मुकाबला किया। जब इस जिहाद से वापस आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे दिल के तमाम ख्यालात को बता दिया कि तुम ये सोच के आए थे और इस नीयत से आए थे और मेरे कत्ल का इरादा चाहते थे, मगर अल्लाह का इरादा कुछ और था। देख लें, इनके भाई और इनके बाप और चचा मारे गए थे बदर में, और अल्लाह ताला ने इनको इस्लाम की नेमत नसीब फरमाई। और हजरत जुबैर बिन मुताम फरमाते हैं कि इस गजवे में हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास साथ थे, तो मैंने देखा कोई चीज आसमान से उतर रही है चींटियों की तरह, और उसने सारे मैदान को घेर लिया, और उसी वक्त मुशरिकों के कदम उखड़ गए। वल्लाही हमें शक नहीं कि वो जरूर आसमानी मदद थी, यानी कहते हैं हमें इस बात में शक ही नहीं, वो आसमान से अल्लाह ने मदद की। अल्लाह अकबर, अल्लाह अपने प्यारों की कैसे मदद फरमाता है। और यजीद बिन आमिर सवाबी अपने कुफर के जमाने में जंगे हुनैन में काफरों के साथ थे, बाद में ये मुसलमान हो गए। इनसे जब पूछा गया कि उस मौके पर आपके दिलों का रोब और खौफ से क्या हाल था, तो कहते हैं ऐसे था कि जैसे एक तश्त में एक ट्रे में पत्थर रख के बजा कर कहते कि बस जैसे ये आवाज है ना हमारे दिलों की, ऐसी आवाज थी। आप पत्थर रख दें एक ट्रे के अंदर और उनको हिलाएं, तो कहते ऐसे हमारे कलेजे उछल रहे थे और दिल दहल रहे थे। इससे पता चलता है जो दहशत है ना वो भी अल्लाह की तरफ से दिल में तारी हो जाती है, और सकीनत भी अल्लाह की तरफ से थी। अल्लाह ताला जिसके दिल को चाहे रोब और दहशत में डाल दे और जिसके दिल को चाहे सकीनत अता फरमा दे। सुम्मा यतूबुल्लाहु मिन बादी ज़ालिका अला मन यशा, फिर मेहरबान होता है अल्लाह इसके बाद जिस पर वो चाहता है, जैसे मैंने आपको ये बात बताई। और ये भी और इसके अलावा भी ये जो सारे लोग थे ना ये भी मुसलमान हो गए। देखिए ना, इनके जब ये जंग खत्म हुई तो इनके बीवी बच्चे वगैरह 6,000 की तादाद में मर्द औरतें बच्चे वगैरह ये सब कैदी बना के लाए गए थे। तो ये लोग पीछे आए उनके, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम दो में से एक चीज ले लो, या तो अपने कैदी ले जाओ या माले गनीमत ले जाओ। तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे कैदी हमें दे दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हालांकि कैदी जो थे ये डिस्ट्रीब्यूट हो चुके थे, तकसीम हो चुके थे, तो मुसलमानों का इनको दे दो वापस, तो उन्होंने उनको वापस दे दिया। और उसके बाद फिर ये सब मुसलमान हो गए। तो अल्लाह ताला की मेहरबानी, अल्लाह ताला जिस पर चाहे मेहरबान हो जाता है। वल्लाहु गफूर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, इन्नमल मुशरिकूना नजस, मुशरिक जो है नजस है। नजस किस तरह से नजस है, यानी ये नहीं कि फिजिकली वो नजस है, अगर आपके साथ टच हो जाए तो निजासत होगी, नहीं, मानवी तौर पे, यानी उनका अकीदा नजस है, शिर्क नापाकी है, पलीती है। फला यकरबुल मस्जिद अल हराम, तो ये मस्जिद हराम के करीब ना आए। अब ये एक बात बता दी गई, कब ना आए, कब से, अभी तो वो आए हुए थे, बाद आमी हिम हाजा, इस साल के बाद, यानी इस साल के बाद हज उमरा तो बंद है ही है इनके ऊपर, बैन है, लेकिन ये एंटर भी नहीं हो सकते हरम की हदूद में। और आज तक यही कानून है कि मुशरिक क्यों नहीं जा सकते। अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि वो हरम में क्यों नहीं जा सकते, तो बता दिया गया वो नजस हैं। और निजासत कौन सी है उनकी? मानवी निजासत है, यानी शिर्क करने वाले हैं। अखलाक की जो खराबियां उनके अंदर, जो उनकी जिंदगी शिर्क के ऊपर है। वह इन खिफ तुम आईलतन, और अगर तुम्हें मुफलिसी का डर है। आपको पता है मक्का तो हब था तिजारत का, ट्रेडिंग का। यहाँ पे लोग आके ट्रेडिंग करते थे, जो हज का मौसम होता था इस वक्त। तो अब जब कह दिया गया कोई भी नहीं आएगा अब इसके बाद, तो मुसलमानों को तो डर हो गया कि अब क्या होगा, हमारा हमारी इकोनॉमी तो बैठ जाएगी, हम कैसे चलेंगे जब कोई मुशरिक आएगा नहीं। देखो मुसलमान तो कम ही थे ना, ज्यादा तो मुशरिक ही आते थे, तो अब होगा क्या, हमारी रोजी रोटी का क्या बनेगा, फौरन इंसान को ख्याल आता है ना। तो फरमाया फसव युगनीकुमुल्लाहु मिन फद्लिही इंशाअ, अगर वो चाहे तो अनकरीब गनी कर दे तुमको अपने फजल से। अल्लाह ताला चाहेगा तो तुम्हें, ये है ना ट्रस्ट फिर अल्लाह की बात पे, कि फिक्र ना करो अल्लाह तुम्हें गनी कर देगा। और वाकई ऐसा हुआ। देखिए इतनी फतूहात हुई, खास तौर पे किसरा की, जब टू सुपर पावर सी थी ना उस वक्त की, एक किसरा था एक रूमी थे। तो जब ये फतूहात हुई हजरत उमर के जमाने में, तो इतना माल आया था, इतना माल आता था कि समझ ही नहीं आता था सब करेंगे, इतना माल था। और इसके अलावा भी अरब सारा मुसलमान हो गया। फिर जब अरब मुसलमान हुआ, तो फिर जाहिर है उसी तरह हज पे आते थे लोग। और आज भी देखें सारी दुनिया से तिजारत होती है, वहां पे कितना सामान आता है, तो कुछ कमी नहीं आई अल्लाह अपने फजल से। ये होता है अल्लाह का फजल। मगर ये उन्हीं लोगों को समझ आती है जो इनको अल्लाह की बात पे भरोसा हो, उसके वादे पे भरोसा हो, कि अल्लाह ताला ने जब फरमा दिया ना कि वो गनी कर देगा, तो मुझे डरने की जरूरत नहीं। कितनी चीजों पे हम सोचते हैं फिर हमारा क्या बनेगा, हमारी रोजी का क्या बनेगा, हमारे ऐसे। अगर हम अल्लाह की बात मान लेंगे तो फिर इनको हटा दें यहां से आने से। अब अल्लाह का हुक्म था ना कि ये आइंदा से नहीं आएंगे, तो फौरन अपनी रोजी की फिक्र पड़ गई। लेकिन जब अल्लाह ताला ने वादा किया, तो फिर देखो कैसे उनको माला माल कर दिया। किसी मुशरिक की अब वहां पे जाने की जरूरत नहीं, कि वो जाएंगे तो इकोनॉमी चलेगी। हम भी अपनी जिंदगी में अगर इस चीज को समझे ना कि अल्लाह ताला के हुक्म पे हमने चलना है। इन खिफ तुम आईलतन, अगर तुम्हें मुफलिसी का खौफ हो कि मैं गरीब हो जाऊंगा, क्या मेरा बनेगा, मैं किधर से खाऊंगा, तो ये बात को सोच लें। जब अल्लाह के हुक्म को माने, रोजी कमाने में जब भी आपके सामने ऐसी कोई चीज आ जाए कि आपको लगे कि अगर मैंने अल्लाह का ये हुक्म मान लिया तो खाएंगे कहां से हम, तो ये सामने अपने रख लें आयत फसो। अगर अल्लाह चाहे तो गनी कर दे तुमको अपने फजल से। इन्नल्लाह अलीमुल हकीम, अल्लाह ताला तो इल्म वाला हिकमत वाला है, वो जानता है। और उसके हर काम में हिकमतें हैं, उसके जो हुक्म तुम्हें दिए जा रहे हैं उसमें भी हिकमत है। जो तुम्हें कुर्बानी मुश्किल लग रही है, जो तुम्हें लग रहा है अब हमारा क्या बनेगा, तो अल्लाह ताला ने अपने इल्म से ही ये अहकामात दिए हैं ना, और उसमें हिकमतें हैं ना, तो फिर मान लो और समझ लो। और ये यकीन ही काफी है एक मोमिन के लिए कि अल्लाह ताला हकीम है, फिर मुझे क्या प्रॉब्लम है। वो अलीम है, उसको पता है मुझे कहाँ से देनी है रोजी, ये नहीं तो कोई और रास्ता वो निकाल देगा, वो सब कुछ जानने वाला है। अब ये सवाल है कि क्या ये सिर्फ मस्जिद हराम के लिए, या हर मस्जिद के लिए है कि फला यकरबुल मस्जिद हराम बाद आमीहिम हादा। ये क्या सारी मस्जिदों के लिए भी है कि मुशरिकीन वहां पे नहीं एंटर हो सकते? नहीं, ये सब मस्जिदों के लिए नहीं है, ये मस्जिद हराम के लिए है सिर्फ इसलिए क्योंकि मस्जिद नबी में सुमामा बिन असाल को एक सुतून के साथ भी बांधा गया था। तो हमें इससे पता चलता है कि दूसरी मस्जिद में हमारे पास इंटरफेथ के लिए भी लोग आते हैं, दूसरे मजाहिब के हमारी मसाजिद में आते हैं, तो वो आ सकते हैं। फिर हम ये नहीं कहेंगे कि कुरान में तो ये है कि ये नहीं आ सकते मस्जिद हराम के पास, तो लिहाजा किसी मस्जिद के पास भी ना आए, ऐसा नहीं। ये वहाँ की स्पेसिफिक इसलिए है, वहाँ का जो तकद्दस है वहां की जो जो उस घर की जो एहतराम है उसके पेशे नजर मुशरिक वहां नहीं जा सकते, मगर और मसाजिद जो हैं उनमें जा सकते हैं। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। तिलावत सुनिए।
أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم